ने आपने जिठानी की सेवा करी। और जिठानी और जेठ किस प्रकार का बर्ताव किया कि जब भीमसेन छोटा था तो उसे वो दुर्योधन ने विष दे दिया और धृतराष्ट्र की सलाह से थी, समझो कि गांधारी माने गांधारी ने भी मालूम है, और धृतराष्ट्र की सलाह से थी दुर्योधन ने पांडव को लाठा भवन में भेजा और उसके आग लगाने का प्रबंध कर दिया। इसी प्रकार से जितने जो अनर्थ किए पांडवों को वन में भेजने आदि का सब धृतराष्ट्र का काम, और गांधारी भी उसके साथ साथ में रही। इस बात को कुंती जानती है। जब कुंती के पांचों पुत्र बनवासी का रूप धारण करके और द्रौपदी के सहित वन में जा रहे हैं तो कुंती कुर्री की माँ पर रोती हुई उनके पीछे ऐसा भाग रही है। फिर विदुर जी ने उसको पकड़ा और कहा कि तुम हमारी माँ के समान है और अपने घर में चाल करके रहे। विदुर जी अपने घर के मन लाए और 13 वर्ष तक उनकी अपने भाभी की सेवा करी। किंतु धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने गांधारी ने धृतराष्ट्र के पुत्रों की जो बहु है उन्होंने किसी ने चूं तक नहीं किया, कभी उससे मुलाकात भी नहीं की, उनका जाकर दर्शन भी कभी नहीं किया। इस प्रकार का उनके साथ में समझो कि बर्ताव हुआ, बड़ा कठोर बर्ताव हुआ। इस सारी बातों को वो भुला करके गए और वो कुंती उनके साथ में जा रही है और जाकर के वन में तपस्या कर रही है और उनकी सेवा कर रही है अपने जेठ और जिठानी की। और वो सेवा जब तक जी तब तक उनकी सेवा ऐसा करी। इसलिए कुंती भगवान की उत्कोटि की भक्त वो सदाचारिणी थी। तो माताओं को उनका लक्षण अपने में धारण करना चाहिए और भाइयों को राजा युधिष्ठ का अनुकरण करना चाहिए, भगवान राम का अनुकरण करना चाहिए। भगवान राम जो है समझो कितने सत्यवादी थे। बाद में रामायण में जगह जगह ये बात आती है कि राम एक ही बार बोलता है, राम एक दूसरी बार उस बात को नहीं कह रहा। तो वास्तु के मामले बड़े उत्कोटि के सत्यवादी थे। ऐसे कुंती भी बड़ी उत्कोटि की सत्यवादिनी थी। देखो ख्याल करके के पांडवों ने जाकर के कहा कि हम कोई एक चीज जाए हैं। कुंती कहती है पांचों तुम भोगो। फिर आपने जिसे कहते हैं भीम कहते हैं कि माँ वे तो एक स्त्री जाए हैं, उसको पांचों कैसे भोगे। माता एक व्याकुल होकर के युधिष्ठिर से कहती है कि बेटा मेरा वचन कभी ऐसा मिथ्या नहीं होता, किंतु आज ये मेरे वचन ऐसा मिथ्या होंगे क्योंकि स्त्री के साथ में 5 बच्चे कैसे हो सकते हैं। युधिष्ठिर ने कहता तुम कोई बात की चिंता मत करो, ये लोक विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, किंतु आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे, आपके वचन को मिथ्या नहीं होने देंगे, इनके साथ हम 5 मिलकर के विवाह करेंगे। जो लोक विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध जाकर राजा समझो कि द्रुप्द को कहा कि इनके साथ हम सब ब्याह करेंगे। द्रुप्द ने कहा कि नहीं, जिसने मत भेजा है ये तुम्हारा बिचला भाई, इसके साथ में मैं इनकी शादी करूंगा, सबके साथ में नहीं। तो दोनों तरफ तनातनी हो गई, लड़ाई की तैयारी हो गई। तो उस समय में वेद व्यास जी प्रकट हुए बिना बुलाए ही, अंतर्यामी ठहरे हुए तो, और प्रकट होकर के राजा द्रुप्द को एकांत में ले गए और ले जाकर के कहा कि राजन इसी समय आपको विरोध नहीं करना चाहिए, इन पांचों के साथ तुम्हारी लड़की को ब्याह दो। अरे बोलो आज तक ऐसी बात नहीं हुई कि पांचों के साथ लड़की का विवाह मैं कैसे कर दूं। बोले इनको तुम पहचानते हो कि नहीं। बोले मैं नहीं पहचानता। बोले ये पांचों पांडव है। बोले पांडव तो राखा भवन में जल करके भस्म हो गए थे। बोले नहीं ये बच गए थे, मैं जानता हूँ ये पांचों पांडव है, इनके साथ विवाह करने में कोई हर्ज नहीं है। तुम्हारी लड़की को पूर्व में शिव जी का वरदान भी है कि तेरे साथ 5 ऐसे ब्याह करेंगे, तो इनके शिव जी के वचन भी मिथ्या नहीं होंगे और इनके साथ ब्याह करने में कोई दोष नहीं है। राजा जिसने अपनी माँ को कह भी दिया है। इस प्रकार वेद व्यास जी के समझाने पर उन्होंने वो बात मंजूर करी, उसके साथ में पांचों का ब्याह द्रौपदी के साथ में। अब कहना यह है कि हर एक बात के बाद दुर्योधन और धृतराष्ट्र इसे पांडवों के साथ में बुरा व्यवहार करते थे, कुंती के साथ में बुरा व्यवहार करते थे, किंतु वही कुंती इसके साथ में कैसा उत्तम व्यवहार करती है, पांडव युधिष्ठिर कैसा उत्तम व्यवहार करते हैं, और अर्जुन का भी ऐसा उत्कोटि का व्यवहार था। अर्जुन के व्यवहार के बीच के माँ बहुत आश्चर्य की बात है, सब देखते हैं पुस्तकों के बीच के माँ। महाभारत का सभा पर देखो आप, जिस समय के बीच के माँ दुर्योधन की विजय हो गई है और द्रौपदी का चिर उतारा जा रहा है, उस समय में दुर्योधन जो है सो अर्जुन से पूछता है कि भाई अर्जुन मैं एक बात तुम्हारे को पूछता हूँ, तुम्हारा भाई युधिष्ठिर जुए खेला और सब कछु हार गया, किंतु हार के बीच के वहाँ धन हार सकता है और मनुष्य की बाजी कोई धरनी कोई कायदे की बात नहीं। तो तुम लोग ये कह दो कि युधिष्ठिर राज हार गया ठीक है, किंतु हम लोग भाइयों के ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं था कि दाब में रख दे, तो तुम लोगों को हम सबको दास भाव से छोड़ देते हैं, दास भाव से छोड़ सकते हैं। तो उस समय के बीच के वहाँ इतना लोभ देने पर भी अर्जुन वहाँ लोभ में नहीं आए। अर्जुन ने कहा कि हे दुर्योधन हमारे ज्येष्ठ भ्राता भाई जो युधिष्ठिर है वे हमारे मालिक है, हमारे सर्वस्व है, हमारा सुख का शरीर उसके समर्पण है, वह चाहे दाम में रखो जो चाहो तो करो, युधिष्ठिर बाजी हमारी धरती और हम हार गए तो हमको सब मंजूर है, हम एक प्रकार से दास भाव को प्राप्त हो गए तो हम सदा दास होकर के रहे हैं, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं, किंतु हम झूठ कैसे कह देवे कि युधिष्ठिर का हमारे ऊपर अधिकार नहीं, वे हमारे को जुए में दाव में रख दिया तो उनकी बात सबको हमको मंजूर है। चुप हो गया दुर्योधन सभा के बीच के वहां। पर अर्जुन का साहस देखना चाहिए, इतना लोभ देने पर भी अर्जुन लोभ में नहीं आए। और जिस समय के माँ धृतराष्ट्र और वन में जा रहे हैं उस समय के बीच के माँ विदुर जी के हाथ धृतराष्ट्र ने यह बात कहाई कि अंत में अब शेष समय में जा रहा हूँ, तो मैं जाने के समय में अपरिमित जो धन है, समझो अश्वारी है और कपड़ा है, नगद है, भोजन है, मैं अपने जो मर गए हैं उनके लिए श्राद्ध करूँ और भी दान दूँ और मैं यज्ञ करूँ, उसकी लिमिट नहीं हुए, मेरी इच्छा हो जिस प्रकार से खुले दिल मैं ऐसा करूँ। तो आकर के विदुर जी ने कहा, ये सुनकर के भीमसेन ने उसी वक्त कह दिया, बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे बेटे का राज नहीं है, ये तो तुम परिमित कर सकते हो, लाख रुपया दो लाख रुपया बतला दो, लिमिट बतला दो, बस इतनी बात कही। इतने पर युधिष्ठिर एकदम आपने बोले कि विदुर जी ये भीमसेन जो है तो मूर्ख है और इसका कोई अधिकार नहीं है, आप जो आकर संदेशा मुझको दिया इसको बीच में बोलने का क्या अधिकार है, इस वास्ते ये मूर्ख है, इसकी बात धृतराष्ट्र के पास नहीं कहना, और मैं आपको जो कहता हूँ वो बात आप सुनो ध्यान दे करके, और वही हमारे पिता के तुल जो धृतराष्ट्र है उसे कह देना। हमारा ये कहना है कि अर्जुन का और मेरा दोनों का जो कुछ राज पर अधिकार है वो सब आपका है, और अर्जुन का शरीर, मेरा शरीर, हमारे अधिकार की चीज जो कुछ है सब आपके आत्म समर्पण, और सब चीज समर्पण, हमारी आत्मा भी समर्पण, चाहे हम लोगों को भी दान दे जाओ, चाहे हमारा राज भी दान दे जाओ। अर्जुन को पूछ रहे हो इसको यह बात स्वीकार है कि नहीं, अर्जुन ने पूछे, अर्जुन से पूछा क्यों अर्जुन, अर्जुन ने कहा कि प्रभु महाराज जिससे जो कुछ कहते हैं उसमें मेरी सम्मति है, धृतराष्ट्र को कह देना कि जो कुछ युधिष्ठिर कहते हैं वो मेरी सम्मति से ही कहते हैं। तो कितना बड़ा त्याग है, ख्याल करना चाहिए, धृतराष्ट्र के बर्ताव की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और अपना जो साधु व्यवहार है ऐसा ही उनके साथ में व्यवहार करते हैं। तो ये बात आपको बताई धार्मिक पणे की, और सदाचार के विषय की जो बात है हमारे शास्त्रों में जगह जगह लिखी हुई, माने समझो धर्म शास्त्रों के बीच के माँ, वे तो धर्म शास्त्र जी मनुवारी, और समझो कि हमारे इतिहास और पुराणों के बीच के माँ, और गीता में भी समझो कि सदाचार की बातें कूट कूट करके भरी है। आप देखिए गीता के समझो कहीं तो ऐसा है कि एक श्लोक को मानने से कल्याण हो जाता है और कहीं दो तीन श्लोकों के साथ में संबंध है। गीता के बीच के माँ समझो कि हमारे जो सदाचारों का विषय है बड़े विस्तार के साथ तो नहीं किन्तु मध्यम वृत्ति से या यूं समझो संक्षेप से हैं। गीता की 16वें अध्याय के आरंभ के 3 श्लोकों के बीच के माँ सदाचार की व्याख्या जो है समझो भगवान तो कहते हैं संक्षेप से ही कही किंतु अपने लिए तो वो विस्तार से ही है, वहाँ बताया है अभयं सप्त संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानं तमस्त यज्ञ से स्वाध्याय अर्जुन अहिंसा सप्तम क्रोध त्याग शांति वैष्णुम दया भूते सुलोलसुम मार्गम धीर चापलम तेज क्षमा धृति सोते मद्रोह नातिमानिता भवंती संपदम देवी ममिजात भारत। ये 3 श्लोक है और इसमें 26 धर्म के लक्षण सब बताए। तो ये जिसमें हो वो देवी संपदा रहा है और देवी संपदा मुक्ति के लिए है। जो आदमी मुक्ति को जाने वाला है समझो कि भगवान के परम को धाम को जाने वाला है उसमें ये 26 बात पहले आ जाती। तो ये 26 बात का रोज पाठ करना चाहिए, इसका अर्थ समझ करके अपने बुद्धि के माइंड को धारण करना चाहिए और धारण करके उसके अनुसार आसन करना चाहिए, फिर निश्चय उसका कल्याण हो सकता है, इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। तो क्या है कि अभयं सप्त संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये 3 जो बात है आदेश लोग में ये 3 इतनी बलवान है कि एक मुक्ति को देने वाली चीज है। अभयं माने निर्भयता, आपने समझो कि किसी को भय नहीं करे, जो आदमी पाप करता है कोई भय करता है और जो पाप नहीं करता उसको तीनों लोकों में कहीं भय नहीं है, जो खुद अभय है और दूसरों को भी अभय देता है, किसी की हिंसा नहीं करता, किसी को दुख नहीं देता, न तो दूसरों को दुख देता है और न दूसरों से दुखित होता है, उसको कहते हैं अभयं। और दूसरा सत्य संशुद्धि, सत्य माने अंतःकरण, अंतःकरण की असम्यक प्रकार से पवित्रता का नाम सत्य संशुद्धि है, माने हम लोगों के हृदय के माँ जो बहुत से पाप है, काम क्रोध लोह मोह आदि और समझो कि राग द्वेष आदि और दुराचार आदि अनेक जनों के पापों का जो संग्रह जो है उस सबको नष्ट कर देना, भस्म कर देना, जला देना, शुद्ध अंतकरण बना लेना, ये सत्व संशुद्धि अंतकरण की शुद्धि है। ये भक्ति से जलते हैं और ज्ञान से भी सब पाप भस्म हो जाते हैं और कर्म योग से भी सब पाप भस्म हो जाते हैं। ये बात शास्त्र के माँ और गीता के माँ जगह जगह सब आपको मिलेगी। तो ये जो तीन जो चीज है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तो भक्ति के द्वारा सारे पापों के नाश की बात आपको मैंने कही। इसी प्रकार से ज्ञान की भी चौथी अध्याय के संजो की आपने 36 और 35 के श्लोक में बताया है, जैसे इंधन के सभी धोगने भस्मसात पूर्व तेज, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात पूर्व तेज। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से पवित्र जो अग्नि है वो सारे इंद्र को भस्म कर देता है, इसी प्रकार से ज्ञानाग्नि सारे पापों को भस्म कर देता है। और भी कहा है कि अभी तेज सी पापे वे सर्वे वे पाप में सर्वज्ञान पलवे नहीं हुए भजनम संत। जिस प्रकार कहते हैं कि अर्जुन जी तू अतिशय दुराचारी पापाचारी, दुनिया में जितने पापी हैं उन सबसे भी जब बढ़कर यदि पापी हुए तो भी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा पाप सागर को लांग जाएगा। तो इस प्रकार से उसका महत्व बताया है। और इसी तरह से भी समझो कि कर्म योग के द्वारा भी काय न मन से अबुद्या केवल इंद्रियपी योगी ने कर्म कुरवंती संयम तक आत्म शुद्ध है। गीता की 5वीं अध्याय के 11 श्लोक के बीच के वहाँ की योगी लोग काया करके, मन करके के, वाणी करके, शरीर करके, इंद्रियों करके के, और समझो कि आपने बुद्धि करके के निष्काम भाव से माने आसक्ति का त्याग करके के कर्म करते हैं आत्मा की शुद्धि के लिए और उनकी आत्मा शुद्ध होकर के परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। तो यह बात भगवान ने गीता की 5वीं अध्याय के 11 और 12 के श्लोक में बताई है। इसी प्रकार से सारे शास्त्र हमारे इस बात को कह रहे हैं। तो ये बताया आपको दूसरा कि अभयम सप्त संशुद्धि और ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये तीसरी बात है। ज्ञान माने परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा के स्वरूप का जो ज्ञान है उस परमात्मा का जो स्वरूप है उसमें चित्त की वृत्तियों को लगा देना वो ज्ञान योग है और उसमें जिनकी स्थिति है वो ज्ञान योग व्यवस्थिति। दूसरी बात यह है कि परमात्मा के ज्ञान के बीच के वहाँ चित्त की वृत्तियों को लगाना और या यूं समझो कि ध्यान योग में स्थिति, वो एक ही बात है। और दानम माने दुखियों को अपना जो हक है, अपना जो अधिकार है वो अपना उसको दूसरों के प्रति प्रदान करना, अन्न है, वस्त्र है, पुस्तक है, कोई भी चीज है उसको दूसरों को देना निष्काम भाव से, सात्विक भाव से, वो सात्विक दान। दम दम माने एक प्रकार से समझो कि अपने इंद्रियों को अपने काबू में करना, दानं दमं दमस यज्ञ से, और यज्ञ माने होम करना, और यज्ञ माने पंच महायज्ञ जो बताए वो उस यज्ञ के अंतर्गत है। दानं दमस यज्ञ से और स्वाध्याय माने भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुस्तकों को पढ़ना, इसका नाम स्वाध्याय। स्वाध्याय तप है, तप माने अपने समझो धर्म के लिए कष्ट का सहन करना, उसका नाम तप है। और आठ जो माने सरलता, जैसा भीतर का भाव है ऐसा ही बर्ताव। तो इस श्लोक के बीच के वहाँ 9 बात बताई गई, अभयंग एक, अभयंग सत्व संशुद्धि दो, और समझो कि माने ज्ञान योग में स्थिति माने ध्यान योग ये 3, और दान 4, और मन को भस्म करना 5, और यज्ञ करना 6, और स्वाध्याय करना 7, और आर्जो जो है सो 8 है, और तप तप जो है सो 9, ये 9 बात कही गई। और आगे के श्लोक में 11 बात है, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग सांद्र वैष्णव दया भूतेश बलम। तो एक तो समझो कि अहिंसा, किसी की आत्मा को कभी किंचित मात्र नहीं दुखाना अहिंसा, और सत्य वचन बोलना अहिंसा सत्य, और एक माने क्रोध नहीं करना ये तीसरी बात है सत्य। अहिंसा सत्य में क्रोध है त्याग है, स्वार्थ का त्याग करके व्यवहार करना जिसको निष्काम कर्म कहते हैं। अशांति माने विक्षेप को अभाव, कितना चंचलता को अभाव। अपेय सुनम माने किसी की चुगली नहीं करना। दानम माने पर आपको बताया था अहिंसा सत्य में क्रोध है त्याग है शांति सुनम दया भूते सुपरम, इसमें 11 बात आई। अहिंसा 1 और क्रोध का न करना 2, और सत्य बोलना 3, और त्याग 4, और विक्षेप का अभाव 5, शांति दूसरों की चुगली नहीं करना, निंदा नहीं करना 6, और 5 और आगे दया भूतेशु अलोक तुम मार्दम हरी रचापरम, भूतों में प्राणियों के ऊपर दया 1 बात, दया भूतेशु अलोक तुम माने विषय भोगों में लिपायमान न होना, दया भूतेशु अलोक तुम 2, दया भूतेशु अलोक तुम मार्दम माने कठोर भाव का त्याग, और दया भूतेशु अलोक तुम मार्दम ही माने लज्जा, शास्त्र की मर्यादा शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चलना, लोक लज्जा शास्त्र लज्जा, और ऐसा परम माने चपलता का त्याग, शरीर की चपलता, वाणी की चपलता, मन की चपलता, शरीर से समझो कि फालतू काम करना वो शरीर की चपलता है, और वाणी से झूठा बकवास करना ये वाणी की चपलता है, और हृदय के मन से फालतू चीजों का स्मरण करना, चिंतन करना, ये हृदय की चपलता है, तो इनका त्याग करना। तो ये 11, 9, 20 और तीसरे श्लोक में 6 बात है, तेज क्षमा दृष्टि सोचे मैं द्रोणा तिमानी था, तेज माने प्रभाव दूसरों पर असर पड़े, क्षमा कि दूसरे के अपराध को माफ कर देना, तेज क्षमा दृष्टि माने एक प्रकार सात्विक दृष्टि या धैर्य समझो, तेज क्षमा दृष्टि सोच है, और बाहर की पवित्रता, भीतर की पवित्रता, तो कही दी थी सत्य संशुद्धि से उस बार की पवित्रता सोचाचार सदाचार जिसकी व्याख्या मैं पूर्व में कर चुका हूँ। तेज क्षमा दो तेज क्षमा तृतीय तीन चौथ चार तेज क्षमा तृतीय सोच अद्रोहता किसी के साथ में द्रोह नहीं करना ये पांचवी बात और मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं करना ये छठी बात। ये सभी जो बात है ये सदाचार का खास स्वरूप है। कहते हैं कि देवी समुदाय के प्राप्त हुए पुरुष में ये लक्षण होते हैं। तो ये सदाचार की जो बात है समझो कि सुनकर के याद करना चाहिए और इसका अर्थ समझना चाहिए भाव समझना चाहिए फिर हृदय क्रमा धारण करना चाहिए और समय आने के ऊपर उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। तो ऐसा जो पुरुष है वो महापुरुष है उसको महात्मा की पदवी दी है कि महात्मा नस्तु मांग पार्थ है देवी प्रकृति माश्रिता देवी प्रकृति के आश्रित देवी संपदा के आश्रित महात्मा जन अनन मन समुद्र को बचते हैं। तो एक प्रकार से उनकी बड़ी महिमा गाई गई है ये भगवान ने गीता की 9वीं अध्याय के 13 के श्लोक में बताया है। तो कहना यह है कि हम लोगों के सारे आसन ऐसे होने चाहिए कि शास्त्र के अनुकूल और वे सारे आसन निष्काम भाव से करने चाहिए। हमारी सारी चेष्टा निष्काम हो तो समझो कि हमारी आत्मा का शीघ्र यशो कल्याण हो जाए। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए अपने से कोई भी काम किया जाए उसके पेट में निष्काम भाव है ना हमारे आचरण में निष्काम भाव है ना हमारी सारी क्रिया निष्काम है ना। जब आपकी सारी क्रिया निष्काम होने लगेगी तो आपकी सारी क्रिया लीला के रूप में मानी जाएगी और भगवान की लीला देख रहे थे मनुष्य पवित्र हो जाता है। इसी प्रकार से तुम्हारी क्रिया को देख करके लोग पवित्र हो जाएंगे दूसरे लोग तुम्हारा अनुकरण करेंगे क्योंकि यदि यदि आचरण श्रेष्ठ है तब तक देव त्रोजने श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है पितृ पुरुष उसी के अनुसार चलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार तुम्हारी जो चेष्टा है अनुकरणीय हो जाएगी और समझो लोगों को कल्याण करने वाली होगी। जो मनुष्य उत्तम आचरण करता है उससे उनका जो निज का कल्याण होता है वो तो होता ही है किंतु उसके अनुसार दूसरे लोगों पर असर पड़ता है और दूसरे लोग उसी के अनुसार समझो कि आचरण करते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है। तो तुम्हारे उत्तम आचरण के प्रभाव से और दूसरों का जो अपना उद्धार होता है वो तुम्हारे लिए और भी समझो गौरव की बात है। एक आदमी सत्य बोलता है उस सत्य बोलने की महिमा है वो तो है ही किंतु सत्यवादी को देख करके दूसरे लोग जो सत्य बोलने लग जाते हैं सत्य बोलने वाले ने इसे भी ये बड़ा भारी संसार का उपकार किया। आप सत्य बोलते हो ठीक है आपको सत्य का लाभ भगवान की प्राप्ति तक हो सका है किंतु आपके सत्य के प्रभाव से दूसरे लोग भी सत्य बोलना शुरू कर दिया तो उनका भी आपको श्रेय है उनका भी कल्याण होगा और समझो कि तुम्हारे भी कल्याण के वहाँ भारी मदद मिलेगी। इन सब बातों को सोच करके मनुष्य को अपना आदर्श सामने उससे रखना चाहिए। जैसे तुलसीदास जी महाराज यहाँ से परम धाम को गए और समझो कि अपने जीवनी और अपने कृत को छोड़ गए और एक प्रकार से अपने बनाए हुए पुस्तकों को छोड़ गए उनके द्वारा लोगों का उद्धार हो रहा है। तो तुलसीदास जी ने जो अपने जीते समय के वहाँ जो धर्म का पालन किया वो तो था ही किंतु मरने के बाद में उनके द्वारा लाखों आदमियों ने जो लाभ उठाया उसका श्रेय भी तुलसीदास जी को ही है। तो इसी प्रकार से हम लोगों को अपने ऐसे आचरण बनाने चाहिए जिससे हमारा भी कल्याण हुए और दूसरे आदमियों की भी सेवा बढ़े उनका भी ऐसा हित और कल्याण हो। तो ये भाव से जो मनुष्य अपना उत्तम आचरण बढ़ाता है उसका उद्धार एकदम शीघ्र ही ऐसा हो जाता है। समय बहुत अधिक हो गया न तो घड़ी को देखा ही नहीं बोलता चला गया सदाचार की तरफ ध्यान हो गया। नारायण
श्रीमन नारायण रुचि है।
अच्छा
मैं पहले आप कैसे बोल रहा हूँ 2 से 4:30 के बीच में
ठीक है श्रीमान जी को भाषण आज 5 से 6 होने की बात
ठीक
है। तेरा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरि बोल हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे